ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं खास यूएसए से आई एक ऐसी सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जो ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सारे सेंटर्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करती हैं, बल्कि कैरेबियन आइलैंड्स के जो जितने भी सेंटर्स हैं, लगभग 38 देश हैं वहां पर जितने सेंटर्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करती हैं और पिछले 50 साल से ज्ञान में हैं। हमारे साथ हैं सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर मोहिनी बहन, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
मोहिनी बहन, अगर हम बात कर रहे थे, अगर हम देखते हैं अपनी जो अभी इन दोनों बातचीत हमने शुरू की है वो है क्राइसिस की है कि जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के आते हैं, हम उन्हें दर्शक ना कह के परिवार का सदस्य मानते हैं, कि जब ज्ञान को समझते हुए अपनी पहचान कि मैं एक आत्मा हूं सच्चित जो कि एक चैतन्य शक्ति हूं, तो अगर मैं ये मान लेता हूं और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ मानता हूं बल्कि उसका अनुभव करता हूं, और तब जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है उसको समझते हुए हर जो मेरा क्राइसिस आता है उसे एक चैलेंज के रूप में लेता हूं। और आपने बहुत अच्छी बात पिछली कड़ी में ये कही थी कि एग्जाम जब आता है, अगर हमने सही ज्ञान लिया हुआ है, अगर हमारी नॉलेज सही है, तो जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है या जो भी चैलेंज आया है वो जरूरी नहीं है कि हम पहले उससे गुजरे हुए हों, लेकिन वो नॉलेज इंप्लीमेंट करके हम उस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमारी आहा मोमेंट होती है जिसे हम अपने पास रख सकते हैं और आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज अभी तक हमने जो बात की थी मोहिनी बहन, वो पर्सनल क्राइसिस की बात कर रहे थे जो जीवन में आता है कि कभी ब्रेक हो गया, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ या फेलियर हुआ जो हम चाहते थे, या और भी जिंदगी की चीजें थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने से बाहर निकल के फैमिली तक आते हैं, परिवार जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वहां जब क्राइसिस हो जाते हैं, जहां बहुत सारे और लोग हो जाते हैं, तब वो मैनेजमेंट, मैं बहुत बार कहता हूं कि मेरे साथ जो हो रहा है उसे तो मैं ज्ञान में रह रहा हूं तो मैं हैंडल कर सकता हूं, लेकिन जब सारे और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तब मैं कैसे सबको समझाता रहूं और खुद भी अपना क्राइसिस मैनेज करूं या उससे एक चैलेंज मानूं, तब क्या करें?
रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो एक दिन नहीं होता है। जैसे अगर आप उस पेरेंट्स और चिल्ड्रन का लें, अब पहचान तो नहीं है ना, बेशक हम कहते हैं हमारा बच्चा है या बच्चे को समझ आने लगती है माँ बाप है, बट दे आर अननोन टू ईच अदर, नो इवन रिलेशनशिप इज देयर दैट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बट दे डोंट नो ईच अदर्स पर्सनैलिटी कि ये कैसा होगा, बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, माँ बाप को नहीं पता। माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बड़ा हो तो ऐसा हो वैसा हो, या बच्चा फिर एक्सपेक्ट करने लगता है कि मुझे पेरेंट्स से ये कुछ मिले। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं ना, बिकॉज इन रिलेशनशिप टू नो ईच अदर, जैसे आपने अच्छी बात की कि मैंने तो समझा मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, लेकिन दूसरा समझता नहीं है उस बात को। परंतु अगर मैं उस एटीट्यूड से, उस तरह के संकल्पों से एक संबंध को समझना, देखिए संबंध एक ऐसा है जो बनाया जाता है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई भी चीज होती है ना, बना बना है नहीं है। जैसे आप कहिए माँ बाप बच्चे, तो इट्स नॉट ए रेडीमेड, इट इज फिजिकली।
कुछ चीजें तो उसमें मानी ही हुई हैं कि भाई माँ बाप है तो उनकी केयर करेंगे, बच्चा है तो ही लुक अप टू द पेरेंट्स, लेकिन वो जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इट नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, और वो हमारे अपने हाथ में है कि हम उस संबंध को बनाते कैसे,
तो उसका निर्माण कैसे करते। उसमें कुछ वैल्यूज रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसका मटेरियल जो है वो इट्स वेरी इनर मटेरियल, वैल्यूज का मटेरियल है। कोई सोचे भी कि मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी गिफ्ट्स हैं, मैं मेरे में नेकी है, मेरे में दया भाव है, मेरे में फॉरगिवनेस की नेचर है, हम सभी में कुछ इतनी अच्छी बातें जरूर होंगी जो हम कई बार सोचते नहीं है, रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप उसमें से दो चार भी रिकग्नाइज कर लो कि मेरे को कोई कुछ भी कहता है कि आई कैन फॉरगेट इट इजली और आई कैन फॉरगिव, आप उसको रिलेशनशिप में यूज करिए उस वैल्यू को। अगर आप वैल्यूज को पेरेंट्स से लेते हैं, कम्युनिटी से, कहीं से भी सोर्स बनाइए वैल्यूज का, परंतु फिर आपकी खुद ही सोर्स काम आएगा ना, जो आपके अंदर वैल्यूज है। तो मैंने ये देखा है कि वो नेचुरल भी लगती है, सेल्फ रिकग्नाइज वैल्यूज। तो खुद को सिर्फ आत्मा समझना एक है, दूसरा फिर मैं अगर आत्मा हूं या मनुष्य हूं,
तो फिर तो मेरी अपनी वो है ही वैल्यूज जो मेरे,
तो वो मेरे उसमें भी हम सबके अलग अलग है। जैसे आप देखिए ऑनेस्टी है, कईयों को ऑनेस्टी इतनी पसंद आती है कि वो सारी लाइफ उसी के लिए स्ट्रगल करेंगे, पर कहेंगे आई हैव टू स्टे ऑनेस्ट, तो वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी को रखते हैं। या जैसे अच्छा कम्युनिकेशन एक स्किल है, रिलेशनशिप में आप कोई भी बात होती है आप ठीक से कम्युनिकेट कर लो, अंदर ही आप बात को रखे रहो और दूसरा सोचे पता नहीं क्या बात है, तो शायद कम्युनिकेशन से, कन्वर्सेशन से भी कई सोल्यूशन निकल आते हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आफ्टर सर्टेन एज, बच्चे हैं तो माँ बाप का फर्ज हो जाता है, बड़ों का फर्ज हो जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई करिए अपनी लाइफ में कि मेरे को ये दो तीन बातें बहुत पसंद है, जिस अगर वो नहीं होती हैं तो आई गेट इन स्ट्रगल।
वेरी ट्रू। बहुत अच्छी, यहाँ अपने दर्शकों के साथ कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा हमें सूत्र मिला है आज कि अपने अंदर ही अपनी अच्छाइयों को देखें, यू नो लाइक जो हमारी वैल्यूज जो हमें अच्छी लगती हैं, जिन पर हम चलना चाहते हैं, वो एक आपने कहा कि एक हम उसका उसको अपने साथ एक सोर्स बनाकर रखें उनके साथ कि दिस ये मेरी निधि है, ये है मेरे पास जो एक वैल्यूज का जो एक पूरा का पूरा जो मेरे को अच्छा लगता है, एंड देन उसको हम अपने हर रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करें, एंड देन साथ साथ इनकॉर्पोरेट भी करते जाएं। मोहिनी बहन, क्योंकि अगर हम देखें, आपने कहा कि कोई कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऑनेस्टी पे ही मैं चलूंगा, हर चीज कुछ भी हो जाए मैं ऑनेस्टी को नहीं खोऊंगा, लेकिन उससे क्या होता है वो एक ही तरफ रह जाता है और उनको कहीं ना कहीं वो पेन को बाकी चीजों में सामना करना पड़ता है। सो वो सर्वांगीण जो विकास की बात है, जो हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने की, बिकॉज इफ आई एम अ सोल, आई एम बॉर्न टू एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।
नहीं तो उसमें क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अगर जैसे कहते हैं भाई पेशेंस है, कईयों में बहुत पेशेंस है, पर वो जो लखनऊ वाली कहावत है कि आप कह के गाड़ी भी चली जाए, ऐसी भी पेशेंस ना हो पर उसके साथ प्रॉम्प्टनेस हो। जैसे ऑनेस्टी के साथ साथ अगर विजडम है ना, तो ऑनेस्टी आप सर्वाइव करेंगे विदाउट स्ट्रगल। आएंगे आपके सामने बातें आएंगी, लेकिन यू विल क्रॉस देम वेरी नाइसली। तो हम लोग अपने ज्ञान के हिसाब से ये कहते हैं कि संतुलन बनाओ इन विद इन वैल्यूज ऑल्सो। जैसे कोई है बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन है और वो एकदम सीरियस रहे, उसमें ह्यूमर नहीं है, तो अगर आप उसको बैलेंस करो विथ ह्यूमर एंड ऑल्सो सीरियसनेस, यू आर दैट डीप पर्सन। तो डीप पर्सन भी हो बट वेरी लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस नेचर। तो हम लोग भी यही कहते हैं, जैसा आप बताए कि हाउ टू ग्रुप द वैल्यूज, समटाइम्स यू बैलेंस द वैल्यूज देन यू ग्रुप द वैल्यूज। चलो उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा काम न करके, दिस ऑल्सो इज अ वेरी लर्निंग प्रोसेस कि मैंने ये अप्लाई किया, मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, व्हाट एल्स आई नीड, तो आप दूसरी वैल्यू को लाइए, फिर आपने दूसरी वैल्यू की, इट वर्क टू सर्टेन परसेंट, अब मुझे कोई और वैल्यू लानी है, तो एक अपने में एक हॉबी बना लेनी चाहिए।
गेम, यस, यू नो लाइक वी कीप ऑन लुकिंग फॉर हॉबीज एंड गेम्स, बट दिस इज अ वंडरफुल वे,
दिस इज द जॉय ऑफ लाइफ। यू नो, ये जो हम हमेशा ये कहते हैं कि दुख है, क्राइसिस है, लेकिन मेक ए लाइफ जॉय, जॉयफुल इन ए राइट वे। यू नो, कई जॉयफुल का मतलब समझते हैं ड्रिंक, लेट्स स्लीप, यू नो, इस तरह का जॉय जो है वो तो हर्ट भी करता है और टेम्पररी है, लेकिन एक इनर जॉय जो लाइफ की प्रोग्रेस का है ना, क्योंकि लाइफ इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल थिंग, तो इस जॉय को लेकर के पहले आप अगर उसको जॉय लेंगे ना, तो जब आप वैल्यू शेयर भी करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा है कि जो भी कई भले मानस है वो यही कहते हैं कि नो दे टॉक ओनली ऑफ सफरिंग्स। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास वैल्यूज है और सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है तो आप इम्प्रेस नहीं कर सके,
आपका अनुभव नहीं है,
यू आर नॉट एग्जाम्पल।
बिल्कुल, आपका अनुभव जो है, तो आपके साथ हम यही चाहेंगे कि क्योंकि आपके जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव आते हैं जो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों के ने जब इस ज्ञान को अप्लाई किया और आपने जो बताया और जिस तरह से वो परिवर्तन होता गया, वो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा रहा हो जो कोई क्राइसिस, एक चैलेंज जो है वो एक अपॉर्चुनिटी में बदला हो।
ऐसा है कि परिवार में माँ बाप और बच्चों का एक ऐसा संबंध है, वो सबसे समीप का संबंध है, बेशक बाद में यू नो पति पत्नी वो तो है, लेकिन जब शुरू होती है फैमिली, तो उसमें क्या होता है कि बहुत स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, तो मुझे एक परिवार का मालूम है, उनका एक ही लड़का था और उन माँ बाप का ज्यादा समय सोचना, टाइम टेबल, बच्चे को स्कूल ले जाना, उसी के अराउंड रहता था, और नेचुरली बच्चे ने स्कूल पूरा किया, फिर यूनिवर्सिटी गया, तो वो कॉलेज गया, तो हॉस्टल में रहता था, तो माँ बाप से उसने कहा कि अच्छा हम सैटरडे को मिला करेंगे, तो पेरेंट्स जाने लगे, पर उसकी जब एक्टिविटीज बढ़ गई तो वो उसको ऐसा लगने लगा, इरिटेट होने लगा था,
क्योंकि बच्चे की तो अपनी उड़ान भरनी है उसने,
तो उसको ये लगता था कि माँ बाप को लगने लगा जैसे हम बोझ हैं, जा रहे हैं पर वो एंजॉय नहीं कर रहे। तो फिर वो कहने लगा कि आप ऑल्टरनेट सैटरडे हो, फिर कहने लगा कि अच्छा वंस बनते हैं, तो उनको बहुत ही अंदर में हर्ट होने लगा। तो वो मेरे से किसी तरह से फोन पे बात हुई, तो मैंने कहा आपने अपनी सारी जिंदगी जो थी वो एक बच्चे के अराउंड सेंटर्ड कर दी थी, तो उससे क्या हुआ कि अब आपको वो जो मिसिंग है, यू नो, आपको जो उसका दुख हो रहा है, अब आपको गैप पूरा करना होगा। तो उसके लिए आप कोई सोशल एक्टिविटीज, कोई कम्युनिटी सर्विस, इस तरह से आप अपने को, क्योंकि अब सर्टेन एज के बाद आप, यू नो, बेशक आपके पास जॉब है, सब कुछ है, तो उन लोगों ने जैसे अपना जैसे एक कम्युनिटी लिविंग बना ली, कि कहीं भी जरूरत है किसी की, कोई समाज सेवा है या कोई भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत एक्टिव हो गए, और इतने तक कि वो बाद में प्रेसिडेंट हो गए वहां के इंडियन एसोसिएशन के। तो उसके बाद बेशक उन लड़के ने यूनिवर्सिटी पूरी की, मैरिज हुई, पर उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी अपनी लाइफ है और उनकी भी अपनी लाइफ है। तो एक रिलेशनशिप जो है ना, क्योंकि ये जो पजेसिवनेस है ना रिलेशनशिप में, वो भी बहुत दुख देती है कि मेरे साथ ही, मेरा ही, मेरा समय, हर एक चीज पर फिर वो पजेसिवनेस, फिर कंट्रोल भी होने लगता है, और कंट्रोल और पजेसिवनेस से रिलेशनशिप्स नहीं चलते। कई बार ऐसा हो जाता है, हमने देखा है कि कई फैमिलीज में जैसे माँ है उसका बेटे पर ज्यादा पजेसिव हो जाता है, तो वो डॉटर इन लॉ से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कई ऐसी फैमिलीज में मैंने क्राइसिस देखे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, लेडीज से, आप क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं ही विल लिसन टू मदर, उनकी माता जो कहेगी। पर जब शादी हो गई तो इतना जरूर होना चाहिए मदर को कि वो शेयर करें अपनी बिलोंगिंग, पर अब उसकी लाइफ जो है वो जिनसे मैरिज हुई है उनको अपना परिवार बनाना है, वहां स्पेंड करने देनी चाहिए। तो इस तरह की जब क्राइसिस आती है, तो फिर मैंने उनको यही बताया कि इस समय यही अच्छा है कि आप अच्छी रिलेशनशिप रखो आपकी मदर इन लॉ के साथ, उनका विन करो उनको, जैसे उनको ऐसा लगे कि आप उनको अलग नहीं करेंगी, तो उनको ऐसा लगे कि दैट सेम बॉय कैन बी शेयर्ड, कि मदर के साथ भी संबंध अच्छा रहे और आपके साथ भी ऐसा।
बिल्कुल। और यहाँ जो आपने कहा कि जब जिस आपने बात की कपल की जिनका एक बेटा था, जब उनकी जिंदगी में क्राइसिस आया, या वो ये क्राइसिस था कि उनका जिसको वो सब कुछ समझ रहे थे, क्राइसिस भी अब समझ में आता है बिकॉज ऑफ आर ओन यू नो समवेयर सम मिस्टेक्स, कि पोजेसिवनेस, एक ही रिलेशनशिप को, एक ही संबंध को सबसे इंपॉर्टेंट समझ लिया हमने, और दूसरी तरफ उसको उससे क्या सीखा, वो जो चैलेंज जो था उससे उनको जो सीख मिली वो, या अपॉर्चुनिटी जो उनके लिए आई वो ये कि वो उनको एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया, दे वर एबल टू डू समझो कि वो कभी भी ना करते, वो अदरवाइज कभी सोचते भी ना कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं कम्युनिटी के लिए, या मैं एक ऐसी सेवा भाव के साथ जा सकता हूं, या इतना प्यार मुझे वापस मिल सकता है। यू नो द काइंड ऑफ लव वी गेट फ्रॉम द पीपल व्हेन वी गो आउट एंड यू नो गिव देम लव इज अमेजिंग, वो एक के बजाय पूरी दुनिया से प्यार मिलने लग जाता है।
इसलिए ये एक लर्निंग भी होती है ना कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चे सर्टेन एज तक जब बड़े हो जाते हैं उनको अपनी लाइफ है, तो दे शुड चूज समथिंग अपना टाइम कैसे स्पेंड करना, नहीं तो उनको यही बच्चों की सोचते रहते हैं, उनकी इंतजार करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपनी लाइफ के लिए, जैसे मैंने कई देखा है हमारे यहाँ पर बहुत फैमिलीज हैं सर्टेन एज के बाद, बिजनेस भी उनका अच्छा चल रहा है, तो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो उन लोगों ने ज्ञान लिया है, तो उसके बाद उनको ये हो जाता है कि हमें मॉर्निंग में अपना मेडिटेशन करें, कुछ टाइम हम इसमें स्पेंड करें, ट्वाइस ए वीक, वंस इन ए वीक जब टाइम है कुछ ना कुछ हम सेवा करें, गो फॉर सम काइंड ऑफ यू नो शेयरिंग मैसेज। तो उनसे क्या हो गया कि वो बच्चों से जो रिलेशनशिप था ना वो सेंटर्ड हो जाती है ना एकदम कि हम इस तरह से ही। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हर एक अपनी सर्टेन एज के बाद रिलेशनशिप को मोर कम्युनल बना ले, कि कम्युनिटी रिलेशनशिप हो जाए।
डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं वो जो एक या फिर मैं या मेरा परिवार, यहां तक ना सीमित रह के वो बाउंड्रीज तोड़कर, जो हम हर बार ये कहते हैं कि पूरा संसार हमारा परिवार हो जाता है, वहां तक पहुंच जाए। एक और बात हम ये करना चाहते हैं यहां पे आज मोहिनी बहन की, क्राइसिस जब आता है जिंदगी में, जैसे आपने कहा कि अगर मेडिटेटिव लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं तो वो ज्ञान जो हम लेते जा रहे हैं वो हमें तैयार करता है एग्जाम के लिए, किसी सिचुएशन जब आएगी। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं हर चीज में अच्छा हूं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरा करियर ठीक है, द मोमेंट देयर इज अ हेल्थ प्रॉब्लम. और आज हम उस दौर में हैं, कितनी ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि हम में से हर एक को कोई ना कोई हेल्थ बड़ा इशू, मेजर इशू जो है वो फेस करना पड़ सकता है, या हमारे परिवार में किसी को फेस करना, वो इतना बड़ा क्राइसिस होता है कि उसे हम फेस ही नहीं करना चाहते. वी गो इन सच डीप डिप्रेशन, क्योंकि एक तो समवेयर हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा मेंटली हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो बॉडी ठीक ही नहीं होने को आती फिर, क्योंकि विशेष सर्कल बन चुका होता है. जब तक कि हम यहां से ठीक नहीं होंगे, हम वो बॉडी पे काम कर ही नहीं पाते हैं.
इसलिए हम जो ये कॉन्सेप्ट लेते हैं ना कि आत्मा हूं तो बॉडी तो वही कल है ना. अगर आपके पास कार है, कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी लो, तो कभी तो फिर उसके पार्ट्स जो है वो लूज होने लगते हैं, वेयर टेयर होती है, जिसको मैकेनिकल प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको डिजीज कहते हैं. आजकल मेडिकली भी वो ये एडवाइस करते हैं कि एक तो आपका मैकेनिकल हो गया, लेकिन जो माइंड में सिकनेस ले ली ना आपने, उससे जो स्ट्रेस आती है, उससे जो नर्वसनेस होती है, इट एड्स टू द डिजीज.
वो एक विशेष वो ठीक ही नहीं हो पाती.
नहीं,
जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो भी नहीं ठीक हो पाती.
हाँ, तो इसलिए ही उसको फिर ऐसा समझ से कि अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मैकेनिकल के साथ साथ और इमोशनल एड हो जाता है ना, तो उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. अभी रिसेंटली मुझे इस बात के बारे में, जो लोग फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, ये वो जाते हैं, तो कभी कभी स्ट्रेस होता है बॉडी में, और वो नॉर्मल है. आप मेडिटेशन से आप मैनेज कर लेते हैं स्ट्रेस, पर होगा. अगर आप फ्लाइट में 16 घंटे बैठे हैं तो किसी की भी बॉडी होगी, पर आप मेडिटेट करते हैं थोड़ा हील जल्दी हो जाता है. बीमार कौन है? मैं आत्मा तो बीमार नहीं हूं ना, मेरा शरीर बीमार है. तो मैं तो हमेशा ये कहती हूं कि व्हीकल ठीक नहीं ना, इसको ठीक कर लेंगे. रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट दे देंगे. मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन दे देंगे.
सपोज हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है लोगों को, जो लॉन्ग टाइम सफरिंग है, जहां परमानेंट चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और कैंसर जो हो जाता है, मतलब इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, और वो जो क्राइसिस है उसमें उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है एक तरह से, यू नो, समवेयर
लाइफ खत्म होती है, नए तरह से शुरू करनी पड़ती है. यू हैव टू लिव विद दैट, नो, नोइंग कि भाई अगर आपकी डायबिटीज है तो इसमें खत्म नहीं हो रही, बट यू हैव टू नाउ चेंज कि आपका डाइट कैसा रहे, आपकी थिंकिंग कैसी रहे. तो इस समय यू हैव टू रीओरियंट योर सेल्फ अबाउट योर हेल्थ. तो आप रीओरियंट करें अच्छी लाइफस्टाइल से, पीपल कैन लिव फॉर इयर्स. तो उसको अगर हम अगेन, जैसे मैंने कहा ना कि एक सिचुएशन है, हमारे यहाँ सिचुएशन को हिंदी में कहते हैं परिस्थिति, और जो अंदर की मेंटल स्टेट उसको कहते हैं स्थिति. तो परिस्थिति का मतलब समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल,
स्थिति हो जाती
है, इट्स नॉट योर्स, एंड स्थिति इज योर्स. तो हम लोग हमेशा ये अपने को याद दिलाते हैं कि मैं अपनी स्थिति अपने हाथ में रखूं, और जो परिस्थिति है उसमें मैं जो स्थिति की शक्ति है उसको अप्लाई करूं. और वो जो स्थिति की शक्ति है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ है, वो अगर परिस्थिति में मैं यूज करूंगी तो परिस्थिति बड़ी नहीं होगी, और होगी भी तो वो छोटी हो जाएगी और छोटी से खत्म हो जाएगी.
तो आपने कहा कि परिस्थिति जो है वो जब हम पे स्थिति पे हावी हो जाए तब वो मुश्किल है, लेकिन अगर स्थिति को हम हावी, स्थिति जो है वो अपनी अपनी उसमें रहे, और परिस्थिति जो है वो आएगी और जाएगी, इसको हम एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं.
मैं तो सबको यही राय देती हूँ कि हर एक को इस समय अपने जीवन में जैसे चल रहे हैं, उसके अलावा जो ऑल्टरनेट पाथ भी है, जैसे ऑल्टरनेट मेडिसिन निकली हैं, तो कितना लोग यूज करते हैं, ऑल्टरनेट पाथ का जरूर सोचना चाहिए. और वो ऑल्टरनेट पाथ ये होता है कि आजकल जो लाइफ हम जी रहे हैं वो भौतिक है, जस्ट फिजिकल मटेरियल, स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है. तो अगर हम साथ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें, क्योंकि जैसे आत्मा और शरीर है, तो आत्मा के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, और बॉडी के लिए हमको, यू नो, वैल्यू बेस्ड या मटेरियल, दोनों लाइफ हमको जीनी है. तो वो जो पार्ट मिसिंग है ना, तो मैं तो सबको ये रहती हूँ कि कोई भी तरीके से जो इनर एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लाइफ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. दूसरा जो हमारी इनर पावर है, जैसे सेंस शक्ति है, एडजस्ट करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, शक्तियां बढ़ेंगी. तीसरा, फिर उसके गुण बढ़ते हैं. तो सिचुएशन में चाहिए क्या, कोई शक्ति चाहिए या कोई गुण चाहिए? अगर वो वर्च्यू आप उस समय पर ले आओ, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो आप अंदर में कहो, मैं एयरपोर्ट पर थी, लगे जाने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं आराम से बैठ गई, तो दो चार ऑफिसर्स वहां से गुजर रहे थे, कहते हैं आप इतनी पीसफुली कैसे बैठी हैं? सब लोग तो इतने बेचैन हो रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे बेचैन होने से समान जल्दी तो नहीं आ जाएगा ना। उस समय पर अगर स्पिरिचुअलिटी है तो कोई वर्च्यू यूज कर लेते हैं या कोई पावर यूज कर लेते हैं कि मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है ना, कर लो, तो उस समय पर फिर आप पास हो जाएंगे ना, दैट मीन्स यू विल चेंज इट। और इतना अच्छा हुआ, मैं बैठी थी, कितने लोग जैसे सत्संग की तरह हो गया वहां बैठे बैठे, क्योंकि सब कहने लगे ये आप कैसे करती हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हो गई ना लोगों को भी मैसेज छोड़ने का। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि समझ इस बात की कि जिस समय जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो यूज करो। उसी को मैं इनर एनर्जी भी कहती हूँ, इनर स्ट्रेंथ कहती हूँ। तो उस समय आपको कोई बात बड़ी भी नहीं लगेगी, जो टाइम है वो अच्छा पास हो जाएगा और काम भी हो जाता है।
बिल्कुल, अपनी इनर शक्तियों का एहसास करना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तो कमजोर ही मानते हैं ना अपने आप को। ऑलरेडी हम ये कह रहे होते हैं कि ओफ, वो मैं जिंदगी की इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, उसको हैंडल करता जा रहा हूँ, जिंदगी को हर रोज कर रहा हूँ, अब ये मुसीबत एक और आ गई कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई या मेरे जीवन में ये क्राइसिस आ गया। तो समवेयर क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत वीक महसूस करते हैं मोहिनी बहन, तो हमारे पास जैसे ही क्राइसिस आता है हम बिखर जाते हैं।
नहीं, मैंने तो ऐसा देखा है कि जो बाहर क्राइसिस आते हैं ना, वो अंदर मत लो। मेरे से किसी ने एक बार पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट कोई टाइम था, डिफिकल्टीज के बारे में बताइए। मैं 10 मिनट सोचती रही, मुझे एक भी याद नहीं आई। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आई होंगी, पर मेरा जब डिफिकल्ट टाइम होता है ना, तो मैं जैसे कहा कोई वर्च्यू यूज कर लेती हूँ या मेडिटेट कर लेती हूँ, तो वो मेरे अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है उस समय। उसके बाद मैं सच सोचती रही कि आई तो बहुत बातें होंगी, ऐसा तो नहीं होता लाइफ में नहीं आती, पर मेरे को याद क्यों नहीं आ रही।
तो संस्कार नहीं बना आपका
तो लेकिन एक विधि भी है ना ये, कि उस बात को आप रिकॉर्ड नहीं करो अंदर ना। तो इसलिए जैसे आपने कहा, हम कहते रहते हैं ये हुआ ये हुआ, तो हम सारी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, फिर वो लिस्टिंग होती है ना, वो सारी सामने आ जाती है
फटाफट। लोगों से पूछें कि आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल टाइम कौन सा रहा है, तो वो कहेंगे कि हमारा कोई अच्छा टाइम कौन सा था।
या तो उसमें फिर एक और मेरे साथ थे, हम दो की इंटरव्यू हो रही थी, दूसरे से पूछा कि आपको लाइफ में, उसने तो एक दो तीन चार, तो मैंने कहा नहीं आपको ये सब याद है, मुझे तो याद ही नहीं आ रही। मैं तो सोच रही हूँ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता, नहीं हो, पर मुझे याद ही नहीं आ रही है। तो ये आपने जब कहा ना कि उस समय सब याद आ जाता है, तो ये भी सोचना चाहिए कि देखो आत्मा में भी एक रिकॉर्डिंग हो जाती है, संस्कार बन जाता है। तो मैं बाहर की बात को इतना क्यों अंदर लेती जाऊं कि उसकी रिकॉर्डिंग बने, वो फिर मुझे सारा बार बार याद आता रहे। तो ये भी अगर हम सोचे, इसमें ही सबसे बड़ी बात हरेक को ये सोचनी चाहिए कि मालिक अगर है तो आप अपने संकल्प के और किसी चीज के नहीं, और संकल्प से आप संसार बदल सकते हैं।
संकल्प से ही हम संस्कार बदल पाते हैं,
संस्कार और संसार भी बदल सकते हैं। मेडिटेशन को हिंदी में हम कहते हैं मनन शक्ति। इसका मतलब मैं ऐसे मन को संकल्प दूं जो मन सोचे तो उससे शक्ति बढ़े। तो इसलिए जैसे ये पहला संकल्प हम देते हैं मेडिटेशन में कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, ये संकल्प मन को देते हैं। तो अगर आपने 5 संकल्प दिए और दिन में 10 बार आपने 5 संकल्प रिवाइज किए, तो 50 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आप रिवाइज करेंगे तो वो फिर नेचुरल होता जाता है। तो मन को क्या संकल्प देने हैं उसकी भी शिक्षा चाहिए होती है, क्योंकि हम कहते तो हैं चेंज करो, कहते तो हैं पॉजिटिव, लेकिन क्या करें, कैसे करें। तो इसमें एक तरीका यही है, जैसे आप कार चला रहे हैं तो नहीं ठीक स्पीड बढ़ती नहीं, ठीक नहीं हो रहा कुछ, तो हम न्यूट्रल गियर पे ले जाते हैं ना। जो सोल कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही है, कुछ मत सोचो, लेट्स बी न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब, सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ये कि ये मनन चले कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरे गुण क्या है। ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि आप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होने के बाद क्वालिटी ऑफ थिंकिंग आपकी बदल जाएगी।
बिल्कुल, वो पॉज जो है वो एक पॉज उस क्राइसिस में बहुत जरूरी हो जाता है। और उस पॉज में हम सोच क्या रहे हैं, उस पॉज में क्या हम ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, या उस पॉज में ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं। यू नो आई थिंक दैट रियली स्ट्रेंथन्स यू। आप मोहिनी बहन, आज जो हमने बात की और जिस तरह से आप अपने से निकल के फैमिली तक गए हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी की बात की है कि स्पिरिचुअलिटी जो है उसको लेकर जितनी कंफ्यूजन्स है, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है, वही एक ऐसा ज्ञान है जो हमें हर क्राइसिस को एक चैलेंज के रूप में लेकर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में मदद करने वाला है, उसकी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो वो अभी हम और भी आपसे बात करेंगे कि किस तरह से ज्ञान को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, और मेडिटेशन का जो एस्पेक्ट है वो किस तरह से हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें तैयार करता है कि हम हर जो क्राइसिस आएगा वो एक एग्जाम है जो हम अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
यह हम में से हर कोई फेस करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जैसा कि आज मोहिनी बहन ने यह भी कहा कि वो वर्च्यूज, वो क्वालिटीज, वो जो वैल्यूज हैं जिनको अगर मैं रोज अपने साथ रखता हूं, जैसे एक ग्रुप बना के, बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर उन अच्छाइयों को चेक करें, क्योंकि हम बहुत बार अपनी बुराइयों को तो देखते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत खराब हूं, मुझ में ही गलतियां हैं, लेकिन मुझ में जो अच्छाइयां हैं उन्हें मैं बार बार अपने साथ रखूं और इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस में भी रहूं, तो मैं तैयार रहूंगा। जैसे ही क्राइसिस आएगा, कोई ना कोई वर्च्यू, वो एक पॉज लेकर उस वर्च्यू को मैं इंप्लीमेंट कर दूं और समझ लूं, याद कर लूं, मनन करने की जो शक्ति है, तो वो शक्ति अगर अपने अंदर महसूस कर लूं तो क्राइसिस जो है उसको हैंडल किया जा सकता है, और वो स्ट्रेंथ हमें आएगी मेडिटेटिव अगर हम लाइफस्टाइल जीते हैं। कैसे वो लाइफस्टाइल लेते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको यही बताना चाहेंगे कि आज की इस पूरी बातचीत से जुड़े कोई ऐसा सवाल है, कोई बात जो आपको कहीं ना कहीं अभी नहीं समझ में आ रही, आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स में कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इन टेलीफोन नंबर्स पर फोन करिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
तो अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम।